ज्ञान चंद्रिका जीव कांड लेक्चर नंबर 14। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोए सवसामूनम्। सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिन्दवरनेमि चन्दमकलङ्कम्, गुणरयणभूषणुदयम् जीवस्य परूणम् वोच्छम्।
आचार्य कल पंडित टोरल मल जी द्वारा लिखित ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड है। इस भाषा टीका का यहाँ हम हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या है 77। यहाँ हम गुणस्थानों की बात देख रहे हैं और अपना असंयत गुणस्थान के स्वरूप की बात चल रही है। उसमें पहले वेदक सम्यक्त्व की बात उठाई थी। तो वेदक सम्यक्त्व क्यों कहते हैं? क्योंकि दर्शन मुनि की जो सम्यक प्रकृति है, उस सम्यक प्रकृति का यहाँ उदय चल रहा है। और वो दर्शन मुनि की प्रकृति होने पर भी देशघाती प्रकृति है, तो देशघाती प्रकृति होने के कारण सम्यक्त्व तो बना रहता है, फिर भी उसमें चलमलिन अगाढ़ दोष उत्पन्न होते हैं। तो उसका उदय है, उसका जीव वेदन करता है, इसलिए उसको वेदक सम्यक्त्व कहा। उसी वेदक सम्यक्त्व को शोभसम सम्यक्त्व इसलिए कहते हैं कि वहां मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, उनके स्पर्धक भी सर्वघाती है, तो उनका उदय नहीं हो रहा है। उदय नहीं होना, इसी को उपशम कहा है। और क्षोभशम सम्यक्त्व में इसका कैसा उपशम पाया जाता है? तो अप्रशस्त उपशम पाया जाता है। दिव्या बहन आती है तो फिर उसको ले लेंगे, उनको प्रश्न था ना, प्रशस्त अप्रशस्त, फिर उसको दोबारा समझाएंगे। तो यहां अपना 77 पृष्ठ पर विषय चल रहा है, सो वेदक सम्यक्त्व कैसा है। ये बीच वाला बड़ा पैराग्राफ कहते, नित्यम अर्थात नित्य है इस विशेषण द्वारा इसकी जघन्य स्थिति अंतर्मूर्त है। तथापि कम से कम उसका काल कितना है वेदक सम्यक्त्व में रहने का? तो अंतर्मूर्त हो सकता है, दोबारा वो मिथ्यात्व में जाए, हो सकता है अंतर्मूर्त में क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करे। तथा उत्कृष्ट पने से 66 सागर प्रमाण काल तक रहता है। लगातार वेदक सम्यक्त्व रहे तो कितने काल तक रहता है? तो 66 सागर तक। इस कारण उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा दीर्घ काल तक रहता है, इसलिए नित्य कहा है, क्योंकि लंबे काल तक ये पाया जाता है, ये रह सकता है। परंतु सर्वकाल अविनश्वर की अपेक्षा है नित्य न समझना। सर्वकाल अविनश्वर ने जैसे क्षायिक सम्यक्त्व है, वो तो सदा काल रहेगा, ऐसी अपेक्षा यहाँ नहीं समझना। पुनश्च कैसा है? कर्म क्षपण हेतु अर्थात कर्म क्षपावने का कारण है। सम्यक्त्व जो है कर्म क्षपावने का कारण है। इस विशेषण द्वारा मोक्ष के कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणाम है, उनमें सम्यक्त्व ही मुख्य कारण है, ऐसा सूचित करते हैं। यानी अकेले वेदक सम्यक्त्व की बात नहीं है यहाँ पर, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वही मोक्ष मार्ग है और वही कर्म क्षपण का हेतु है, मोक्ष का कारण है, ये बात यहाँ बता रहे हैं। पुनश्च वेदक सम्यक्त्व में शंकादिक मल है। ये शंकादिक कौन कौन से है? हाँ अश्विन भाई, शंकादिक मल कौन कौन से बताए कल हमने देखे? हाँ, चलमलिन और अगाढ़। वे भी यथासंभव सम्यक्त्व का मूल से नाश करने का जो कारण नहीं है ऐसे सम्यक प्रकृति के उदय से उत्पन्न हुए हैं। पुनश्च औपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व में मल उपजाने का कारण ऐसे उस सम्यक्त प्रकृति के उदय के अभाव से, क्या कहना चाहते हैं? औपशमिक सम्यक्त्व में दर्शन मुनि की कौन सी प्रकृति का उदय है? हाँ, किसी भी नहीं। और क्षायिक सम्यक्त्व में वो तो सत्ता में ही नहीं है। वेदक सम्यक्त्व में दर्शन मुनि का कौन सा उदय है? सम्यक प्रकृति का। यही बात कहते हैं, ये दर्शन मुनि की सम्यक प्रकृति के उदय के कारण चलमल और अगाढ़ दोष होते हैं, परंतु औपशमिक सम्यक्त्व में और क्षायिक सम्यक्त्व में उसका उदय है ही नहीं है, उदय का अभाव है, इसलिए निर्मलपना है। जैसे क्षायिक सम्यक्त्व निर्मल है, निर्मल मल से रहित, कौन से? चलमल अगाढ़ दोष। वैसे ही औपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व जो है दोनों समान निर्मल है, क्योंकि वहां दर्शन मुनि की वो सम्यक प्रकृति का उदय नहीं पाया जाता।
देखो यहाँ पर एक बात जरा फिर से हम देखेंगे, ऊपर के पैराग्राफ की दो लाइनें हैं, पुनश्च सम्यक्त्व में शंकादिक मल है, वो तो हमने पढ़ लिया, वे भी यथासंभव। अभी क्या कह रहे हैं? सम्यक्त्व का मूल से नाश करने का जो कारण नहीं है, यानी क्या कहना चाहते हैं? सम्यक प्रकृति का उदय आवे तो वह सम्यक्त्व का घात नहीं करेगा, और सम्यक मिथ्यात्व अथवा मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो सम्यक्त्व टूट जाता है। लेकिन ये सम्यक प्रकृति है तो दर्शन मोहिनी कर्म, उसका उदय होने से इस जीव के सम्यक प्रकृति नहीं टूटती।
हेलो, हाँ, तो यहाँ जो अभी हमने देखा है, तो इसी ये जो चलनादिक जो मल है, चलमल अगाढ़, उनका यहाँ लक्षण बताने वाले हैं। ये ऊपर जो शंकादिक मल लिखा है, मैं तो मूल पुस्तक में देखूंगी ये शंकादिक कैसे आया, क्या चलादिक चाहिए? नहीं, शंकादिक ही लिखा है यहाँ पर भी, मूल टोरमल जी के पुस्तक में भी शंकादिक मल ही लिखा था, क्योंकि हमने चलादिक मल देखे नहीं, चलमल अगाढ़ दोष। हाँ, परंतु ये तो ढूंढारी में भी शंका दिखी है, मुझे भी ऐसा लगा कि भूल से ये बात रहेगी, क्या क्या है, हो सकता है वहाँ भूल रही गई होगी। हाँ, पुनश्च चलादिकों का यानी ये जो मल है अलग अलग तीन प्रकार के, उनके लक्षण कहते हैं, वह चलपना के, वहाँ चलपना कहते हैं, मिला ना? 77 पृष्ठ पर है, हम नानात्मीय विशेषेषु चलती चलम स्मृतम लसत कल्लोल मालासु जलमेकमवस्थितम स्वकारिते चैत्यादौ देवोऽयं मेऽन्यकारिते अन्यस्यायमिति भ्राम्यन् मोहाच्छादोऽपि चेष्टते। इसका अर्थ, नाना प्रकार अपने ही विशेष अर्थात आप्त, आप्त का अर्थ क्या देखा था हमने? अर्यंत भगवान। हाँ, आगम, आगम यानी उनके द्वारा जो दिव्य ध्वनि के द्वारा जो शास्त्र रचे गए वो आगम और पदार्थ, आगम में जिन पदार्थों का वर्णन किया है, छह द्रव्य सात तत्व आदि सब उसको पदार्थ कहेंगे, इनके श्रद्धान के भेद, पदार्थ रूप श्रद्धान के भेद, उनमें जो चलायमान हो, चंचल हो, उसे चल कहा है, उसका स्वरूप कहेंगे भी, वही कहते हैं। यानी कैसा वहां चंचलपना होता है? अपने किए हुए अरहंत प्रतिबिंबादिक में यह मेरा देव है ऐसे ममत्व से, हमने जो कोई तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित की हो तो ये हमारे भगवान है, ऐसे उसमें लगाओ ऐसे ममत्व से। तथा अन्य द्वारा किए हुए अरहंत प्रतिबिंबादिक में यह अन्य का है, इस तरह पर का मानकर भेद रूप भजता है, इसलिए चल कहा है। फिर भी ऐसा चलायमान नहीं होता कि मिथ्या दृष्टि हो जावे। अन्य देवों को नहीं भजेगा, यहाँ दृष्टांत कहते हैं।
लेकिन यहाँ पर ये जो चल दोष है वो सम्यक भी को है, इतना ध्यान रखना। हाँ।
हाँ। यहाँ दृष्टांत कहते हैं, जैसे अनेक प्रकार के कल्लोल तरंगों की पंक्ति में जल है, कोई तालाब है तो उसमें तरंगे हैं बहुत सारे, उनकी पंक्तियां हैं। जल एक ही अवस्थित है, तथापि यानी वो जल की ही अवस्थाएं है, उसमें जल एक ही है, फिर भी नाना रूप होकर चल है। वैसे मोह जो सम्यक प्रकृति का उदय उससे श्रद्धान है, वह भ्रमण रूप चेष्टा करता है। यानी यहाँ कुछ उसमें दोष उत्पत्ति होती है, सम्यक तो बना रहता है, श्रद्धान तो है, फिर भी उसमें थोड़ा दोष उत्पन्न होता है। इसी का भावार्थ पंडित जी ने बताया है, जैसे जल तरंगों में चंचल होता है परंतु अन्य भाव को नहीं भजता, यानी नहीं प्राप्त होता। जल तो तरंग रूप होता है परंतु जल पलट कर कुछ अन्य रूप नहीं हो जाता। वैसे वेदक सम्य दृष्टि स्वयं ने या अन्य ने किए हुए जिन बिंबादी में यह मेरा यह अन्य का इत्यादि विकल्प करता है, परंतु अन्य देवादिक को नहीं भजता। यानी उसका सम्यक पर टूट नहीं जाता है, परंतु किंचित मल उत्पन्न होते हैं। यहाँ तो चल दोष संबंधी बताया, अब मलिनपना कहते हैं। तदप्यलब्धमाहात्म्यं पाकात् सम्यक्त्व कर्मण मलिनं मलसंगेन शुद्धं स्वर्णमिवोद्भवेत्। उसका अर्थ, सो भी वेदक सम्यक्त्व है, तद अपि वह भी वेदक सम्यक्त्व है, वह सम्यक प्रकृति के उदय से नहीं पाया है महात्म्य जिसने, ऐसा होता है। अलब्ध महात्म्यम पाकात सम्यक्त्व कर्मणा, पाक है उदय, सम्यक्त्व कर्म के उदय से ये वेदक सम्यक्त्व होता है। पुनश्च वह शंकादिक मल के संग से मलिन होता है। जैसे क्षायिक सम्यक्त्व को हम उसका महात्म्य बताते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, उसमें कोई दोष नहीं है, पूर्ण निर्मल है, परंतु ये वेदक सम्यक्त्व कैसा है, उसमें मल उत्पन्न होता है। तो मल के पुनश्च वह शंकादिक मल के संग से मलिन होता है। जैसे शुद्ध सोना बाह्य मल के संयोग से मलिन होता है, वैसे वेदक सम्यक्त्व शंकादिक मल के संयोग से मलिन होता है। सर्वत्र शंकादिक ही कहा, उसी को यहाँ ये मल कहा है। अब अगाढ़ कहते हैं, स्थाने वस्थितं कम्प्रमागाढमिति कीर्त्यते वृद्ध्यष्टिरिवात्यक्त स्थाना करतले स्थिता समेप्यनंत शक्तित्वे सर्वेषामर्हतामयं देवोस्मै प्रभुरेशोस्मा इत्यास्था सुदृशामपि। स्थान अर्थात आप्त आगम और पदार्थों की श्रद्धान रूप अवस्था, उसमें स्थित होकर ही कांपता है। यानी ये जो तत्वार श्रद्धान में स्थित होकर ही कांपता है, नहीं वो तो थोड़ा कमजोर है। जैसे वृद्ध है ना, वो कैसे कंपन है उसमें। गाढ़ा नहीं रहे उसे अगाढ़ कहते हैं, बिल्कुल फर्म नहीं है, फर्म यानी बहुत दृढ़ता कम है थोड़ी, इसलिए उसको कहेंगे अगाढ़। उसका उदाहरण कहते हैं, ऐसे तीव्र रुचि रहित होकर सर्व अरहंत परमेष्ठियों का अनंत शक्तिपना समान होते हुए भी इस शांति कर्म जो शांति क्रिया उसके लिए शांतिनाथ देव है, वह प्रभु अर्थात समर्थ है। पुनश्च इस विघ्ननाशन आदि क्रिया के लिए पार्श्वनाथ देव समर्थ है। इत्यादि प्रकार से रुचि जो प्रतीति उसकी शिथिलता रहती है, यानी दो भगवानों के बीच में डिफरेंस करता है, ये शिथिलता हुई उसकी। यानी कोई एक भगवान मेरा भला करेंगे, पार्श्वनाथ को एक काम सौंप दिया, शांतिनाथ को दूसरा, हाँ पता नहीं किसके कारण। हाँ ये तो उदाहरण के तौर पर दिया है, ऐसे कोई ख्याल में आए ऐसे दोष तो नहीं होंगे, मगर तो किंचित जो केवलिगम में भी होंगे दोष, परंतु उसको समझाए कैसे, समझाने के लिए कुछ उदाहरण दे दिया है, थोड़ी शिथिलता है। इसलिए बूढ़े के हाथ में लाठी शिथिल संबंध पने से अगाढ़ है, वैसे सम्यक तो अगाढ़ है। भावार्थ, जैसे बूढ़े के हाथ से लाठी छूटती नहीं परंतु शिथिल रहती है, कांपता है परंतु वो छूटती नहीं है, वैसे वेदक सम्यक्त्व का श्रद्धान छूटता नहीं। देखो ये दोनों भावार्थ में एक बात आपने गौर की होगी, यह उसका सम्यक्त्व बना रहता है, इस पर उन्होंने जोर दिया है, क्योंकि मूल में तो बताया कि ये मेरे भगवान ये तेरे भगवान, परंतु उन्होंने बोला अन्य भगवान को नहीं बचता है, ऐसे यहाँ भी कह रहे सम्यक्त्व तो नहीं छूटता है, जैसे बूढ़े के हाथ की लाठी तो नहीं छूट रही है फिर भी वो कांपते हैं, वैसे वेदक सम्यक्त्व का श्रद्धान छूटता नहीं, शांति आदि के लिए अन्य देवादिकों को नहीं सेवता तथापि शिथिल रहता है। यानी शांति के लिए, रोग मिटाने के लिए, अन्य अन्य चीजों के लिए कहीं अन्य मतियों के पास नहीं दौड़ेगा, फिर भी अपने भगवानों में थोड़ा इधर उधर उसका श्रद्धान में शिथिलता है। जैन देवादिकों में कल्पना उपजाता है। इस तरह यहाँ चल मलिन अगाढ़ का वर्णन उपदेश रूप उदाहरण मात्र कहा है, ये उदाहरण मात्र समझाने के लिए दिया है। सर्व तारतम्य भाव ज्ञान गम्य है। तारतम्य भाव यानी कम अधिक जो भाव होते हैं, ये सूक्ष्म भाव है, तो ज्ञान गम्य है। अगाढ़, गाढ़ा नहीं है वो अगाढ़, हाँ कमजोर है, दृढ़ता नहीं है इसे। परम अवगाढ़, अवगाढ़ है नहीं वो तो फर्म बिल्कुल, हाँ ये अगाढ़, अवगाढ़ तो अरिहंतों की होते ना, परम अवगाढ़। हाँ आगे, औषमिक शायिक सम्यक्तों के उपजने के कारण और स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। वेदक सम्यक्तों के उपजने का कारण यानी उसमें कर्मों की कैसी अवस्था होती है उसकी बात तो हमने देख ली है, अब यहाँ क्षायिक सम्यक्त्व की बात करेंगे। 26 नंबर की गाथा। सत्तन्नम वसमदो वसम सम्मोखया दुखयोय विदिय कसायुदयादो असंजदो होदि सम्मोय सप्तानाम उपशमता उपशम सम्यक्त्वं क्षयात्तु क्षायिकं च द्वितीय कषायोदयात् असंयतं भवति सम्यक्त्वं च। द्वितीय कषाय के उदय से, कौन सा द्वितीय कषाय है? अप्रत्याख्याना वर्ग, तो यहाँ कहते हैं सप्तानाम उपशमता, सातों का उपशम होने से, कौन से सात? अनंतानुबंधी चार और दर्शन मुनि की तीन, इन सातों का जहाँ उपशम पाया जाता है वहाँ उपशम सम्यक्त्व कहेंगे, और जहाँ सातों का क्षय पाया जाता है उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहेंगे, और वहाँ द्वितीय कषाय यानी अप्रत्यक्ष अनावरण का उदय है। टीका। नहीं पाया जाता अंत जिसका, ऐसा अनंत अर्थात मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का एक नाम है अनंत। हाँ। उसके साथ जो जाता है अनंतानुबंधी, उसे अनुबधनंती अर्थात उसका आश्रय करके प्रवर्तते है ऐसे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ। अनंतानुबंधी का नाम ऐसे क्यों पड़ा? तो यह अनंत जो मिथ्यात्व, तो उसके साथ जाता है, मिथ्यात्व के साथ साथ काम करता है तो चारित्र मोहनी वाला डबल एजेंट है, यानी क्रोधमान माया लोभ तो उत्पन्न होते हैं उससे, परंतु वह मिथ्यात्व के साथ साथ चलता है। ऐसे अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ ये चार हुए, तथा मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति नाम धारक दर्शन मुनि की तीन प्रकृति, इस तरह सात प्रकृतियों का सर्व उपशम होने से, क्षोपशम में तो हमने अलग बात देखी थी, यहाँ तो सर्व उपशम होने से औषमिक सम्यक तो होता है। पुनश्च उसी तरह उन सात प्रकृतियों के क्षय से क्षायिक सम्यक तो होता है, तथा दोनों ही सम्यक तो निर्मल है। निर्मल क्यों कहा? वहां वो मल उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि शंकादिक मलों के अंश की भी उत्पत्ति नहीं होती। ये शंकादिक जो कहते हैं ना, जैसे हम निशंक वगैरह गुण कहते हैं, वैसे शंका आदि जो दोष है उसमें आंशिक उसकी कहीं उत्पत्ति होना शंकादिकों की, उसको ये शंकादिक मल कहे। परंतु ये सूक्ष्म दोष है, ऐसे बहुत स्थूल रूप से वो नहीं पाए जाते। शंकादिक शब्द अभी चार बार आ गया, देखो नहीं चलमल अघाड़ है, फिर भी शंकादिक मल ऐसा कहा, मल में शंकादिक मल लिया, चल दोष मल दोष और अगाढ़ दोष, मल में शंकादिक मल ले लिए उन्होंने, यानी उसका अंश बिल्कुल आंशिक प्रमाण में कोई हल्का सा दोष लगे। तो यहां कहते हैं शंकादिक मलों के अंश की भी उत्पत्ति नहीं होती। पुनश्च वैसे दोनों सम्यक तो निश्चल है, निश्चल वो चल भी नहीं है, पहले कहा वो मल भी नहीं होते उसमें, निर्मल है, अब कहते निश्चल है, समझ में ना। वेदक सम्यक्तों में चल दोष भी है मल दोष भी है, उसके अगेंस्ट इसको निर्मल कहा और निश्चल कहा, क्योंकि आप्त आगम पदार्थ गोचर श्रद्धान भेदों में कहीं भी स्खलित नहीं होता। पदार्थ गोचर जो श्रद्धान है, यानी आप्त आगम और पदार्थ संबंधी जो इसका श्रद्धान है वो कहीं भी स्खलित नहीं होता है। पुनश्च उसी प्रकार ही दोनों सम्यक्त्व गाढ़ है, वहां अगाढ़ कहा था यहां गाढ़ कहा। देखो जब हम वेदक सम्यक्त्व देखते थे तो उसमें चल दोष मल दोष और अगाढ़ दोष थे, और ये अन्य दो औषमिक और क्षायिक कैसे, निर्मल निश्चल और गाढ़।
स्खलित नहीं होता यानी क्या?
स्खलित नहीं होता है वो तो गिरता नहीं है, पतन नहीं होता है, उससे च्युत नहीं होता है। हा? अच्छा है, अब पूछना, ये सबके लिए पूछ रहे पता है। हा? क्योंकि आप्तादिक में तीव्र रुचि होती है, ये रुचि की कमी नहीं है, यहाँ वहां लिखा था तीव्र रुचि रही ऐसा लिया था, निकालो जो कोई हमने श्लोक पढ़ा था ना उसमें देखा था, ये तीव्र रुचि रहित ऐसा शब्द आया था। सेवेंटी एट पर हाँ ये कैसा है ऐसा लिखा था ना उसमें है ना, 78 में, हमें 77 में देख। हाँ
उदाहरण कहते हैं क्या
है? नीचे से दूसरी लाइन 78 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी लाइन, तीव्र रुचि रहित होकर, अगाढ़ की बात ली थी ना, रुचि तो है तीव्र रुचि रहित है, और अब यहाँ क्या कहा, तीव्र रुचि का होना, आपतादिक में तीव्र रुचि होती है, यानी वेदक और इसमें ये जो अंतर है वो स्पष्ट किया है। यह मल का नहीं होना, स्खलित नहीं होना यानी गाढ़ा रहना, या मल के दोष उत्पन्न नहीं होना, निश्चल रहना, स्खलित नहीं होना यानी निश्चल, मल का नहीं होना यानी निर्मल, और तीव्र रुचि का होना यानी गाढ़, ये तीनों इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ सम्यक प्रकृति के उदय का अत्यंत अभाव है, यानी बिल्कुल उसका कोई भी वहाँ सद्भाव है ही नहीं, उदय है ही नहीं। पुनश्च इस प्रकार कहे हुए तीन प्रकार के सम्यक्तों से परिणमित हुआ जो सम्यक दृष्टि जीव, वह द्वितीय कषाय जो अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, इनमें से एक किसी के उदय से असंयत अर्थात असंयमी होता है, इसीलिए इसका नाम असंयत सम्यक दृष्टि है। इसको असंयत क्यों कहा? क्योंकि जहां अप्रत्याख्यानावरण का उदय है वहां किंचित भी त्याग देश यानी अनुव्रत भी नहीं होते, किंचित भी त्याग नहीं पाया जाता, इसलिए इसका नाम है असंयम, असंयत गुणस्थान। आगे तत्वार श्रद्धान का सम्यक प्रकार ग्रहण और त्याग का अवसर नहीं है, उसे ही दो गाथाओं द्वारा प्ररूपित करते हैं। सम्मा इट्ठी जीवो उवइट्ठं पवयणं तु सद्दहदि सद्दहदि असभावं अजानमानो गुरुनियोगा सम्यक् दृष्टिर्जीव उपदिष्टं प्रवचनं तु श्रद्दधाति श्रद्दधाति असद्भावं अज्ञायमानो गुरुनियोगा। ये 27 और 28 नंबर की गाथा है, बहुत प्रसिद्ध है और बहुत जिसको कहते हैं ना खास बात उसमें आती है, पढ़ेंगे हम। जो जीव अर्हंतादिकों द्वारा उपदेशित, पृष्ठ 80 पर चल रही बात अपनी, 27 नंबर की गाथा की टीका। जो जीव अर्हंतादिकों द्वारा, अर्हंतादिक में किसको लेना, अरिहंत है, आचार्य उपाध्याय है, साधु है, और उसी के परंपरा के अनुसार जो उपदेश ज्ञानियों को मिलता है, ज्ञान द्वारा मिलता है, तो अर्हंतादिकों द्वारा उपदेशित ऐसा जो प्रवचन अर्थात आप्त आगम और पदार्थ, ये तीन प्रवचन किसको कहा, प्रकृष्टपणे जिनका स्वरूप इसमें बताया जाता है, ऐसे आप्त आगम और पदार्थ तीनों को मिलकर प्रवचन कहा। प्रवचन ने अकेले व्याख्यान नहीं लिया या। उन्हें श्रद्धाती अर्थात श्रद्धता है, उनमें रुचि करता है। पुनश्च उन आप्तादिकों में असद्भावम अर्थात अतत्व अन्यथा रूप, उसको भी अपने विशेष ज्ञान के अभाव से केवल गुरु ही के नियोग से, जो इस गुरु ने कहा सो ही अरहंत की आज्ञा है, इस प्रकार प्रतीति से श्रद्धान करता है, वह भी सम्यक दृष्टि ही है। क्या कहते हैं ये प्रयोजनभूत सात तत्वों के बारे में तो कोई वहां अन्यथा भाषी बात है ही नहीं है, परंतु वहां किसी गुरु के उपदेश के कारण उसके कोई थोड़ी विपरीत भी अन्यथा भी श्रद्धा होती है तो भी उसकी मान्यता क्या है, ये अरहंत भगवान ने ऐसा ही बताया है, तो भी कहते वह सम्यक दृष्टि है क्योंकि उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। इसी बात को पंडित जी ने भावार्थ में और समझाया। जो स्वयं को विशेष ज्ञान न होते हुए तथा मंदमती जैन गुरु से आप्तादिक का स्वरूप अन्यथा कहने पर, और यह आप्त आगम और पदार्थ में अन्यथा कहने पर, और यह अरहंत की ऐसी ही आज्ञा है, इस तरह मानकर जो असत्य श्रद्धान करे तो भी सम्यक दृष्टि का अभाव नहीं होता, यानी उसका सम्यक दर्शन चला नहीं जाता है। क्योंकि इसने तो अरहंत की आज्ञा जानकर प्रतीति की है। अब ये आधा ही मत पढ़ना, आगे वाला ही भी 28 नंबर की गाथा इसके साथ पढ़नी है।
यहाँ हाँ। एक ऐसी बात विशेष रूप से हमें ध्यान में रखनी है कि यहाँ सम्यक दृष्टि है और उसको कोई गुरु कुछ अन्यथा उपदेश कर रहा है और वो उसने जिनेन्द्र भगवान की ही बात है ऐसा मानकर उसका श्रद्धान किया है कि जिनेन्द्र भगवान की ही बात है, तो अब उसका सम्यक्त्व नहीं टूटेगा, यानी वो ऑलरेडी सम्यक्त्व है, ये बात पहले ध्यान में रखें। फिर से बोलो।
हाँ, भावार्थ। हाँ कौन? ये आज्ञा सम्यक दृष्टि वाला है, ऐसा बोला है वो, बस आज्ञा ये उपदेश सुना, उस पर उसने प्रतीति की और फिर अपने, ऐसा नहीं कि केवल उसकी श्रद्धा की, उसने अपने स्वरूप का भी अनुभव किया है, आज्ञा समय दृष्टि है। अब उसमें जो कोई दोष है वो बात आगे की गाथा में पढ़ेंगे हम, ये भावार्थ मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। जो स्वयं को विशेष ज्ञान न होते हुए
एक कारण
जैसे उसने सुना है उसी पर उसने श्रद्धा की है, क्यों मंदमती जैन गुरु के गुरु से, अन्य गुरु की बात नहीं यहाँ पर, जैनों की, आपतादिक का स्वरूप अन्यथा कहने पर और यह अरहंत की ऐसी आज्ञा है इस तरह से मानकर जो असत्य श्रद्धान करे तो भी सम्य दृष्टि का अभाव नहीं होता, यानी उसका सम्य दर्शन बना रहता है, क्योंकि इसने तो अरहंत की आज्ञा जानकर प्रतीति की है। यहां तक समझे बात? आगे 28 नंबर की गाथा। सुत्तादोतम सम्मम दरसिज्जन्तम जदान सद्दहदि सोचे वह वै मिच्छा इट्ठी जीवो तदो बहुदी सूत्रात्तम सम्यक् दर्शयन्तम यदान श्रद्धाति सचैव भवति मिथ्या दृष्टि जीव तदा प्रवृत्ति। उस प्रकार असत्य अर्थ का श्रद्धान करने वाला आज्ञा सम्यक दृष्टि जीव जिस काल प्रवीण अन्य आचार्यों द्वारा पूर्व में ग्रहण किया हुआ असत्यार्थ रूप श्रद्धान से विपरीत भाव सत्यार्थ, क्या कहते हैं, वो किसी असत्य रूप से पदार्थ की श्रद्धा कर रहा था, अन्य आचार्यों ने, प्रवीण अन्य आचार्यों ने उसको जो सत्यार्थ उसका प्रतिपादन करके गणधरादिकों के सूत्र दिखाकर आगम का प्रमाण दिखाकर सम्यक प्रकार से निरूपण किया हुआ होगा, उसका तो श्रद्धान खोटा था, फिर भी उसने मान लिया था कि यही अरिहंत भगवान का उपदेश है, इसलिए उस पर श्रद्धा करके अपने स्वरूप के अवलंबन से उसने सम्यक तो प्राप्त किया था। अब यहाँ कहते थे कोई जो प्रवीण आचार्य, उन्होंने मूल आगम की सूत्र दिखाकर उसके वो भाव कैसा असत्यार्थ है उसको बता दिया, उसका खोटे हट से श्रद्धा न करे तो, अभी पहले से तो ऐसा माना है, अब वही हट चालू रखे और आगम का प्रमाण दिखाकर भी उसको न माने, तो कहते उस काल से लेकर वह जीव मिथ्या दृष्टि होता है, वो तात्काल मिथ्या दृष्टि हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसको बताया ये आप जो मान रहे थे वो सही नहीं है, ये जो अरिहंत की आज्ञा ऐसी है, फिर भी वो हट से अगर नहीं मानता है तो उसकी तो भगवान की श्रद्धा ही नहीं ना, क्योंकि सूत्र के अश्रद्धान से, सूत्र ने भगवान की जो वाणी आगम जो है, सूत्र के अश्रद्धान से जिन आज्ञा के उल्लंघन का सुप्रसिद्ध पना है, जो सूत्र का श्रद्धा नहीं करता है वो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को उल्लंघता है, यानी आज्ञा को टालता है, आज्ञा को नहीं मानता है, उस कारण से मिथ्या दृष्टि होता है।
यानी हमें ये समझना चाहिए कहीं कोई कुछ प्रतिपादन करे अपने में और उस व्यक्ति को वो सम्यक है कि नहीं उसकी तो बात अभी हम देखते नहीं है कि आगम का प्रमाण बताए और फिर भी वह नहीं माने तो उस जीव के जिनेन्द्र भगवान के प्रति श्रद्धा ही नहीं, ये बात बताना चाहते हैं।
आगे पढ़ेंगे,
वो आपको एक प्रश्न था ना प्रेरणा बहन का, बोलो बोलो बोलो, आप बोलो ना।
हाँ देखो, आपका ऐसा प्रश्न है, ये प्रशस्त और अप्रशस्त, प्रशस्त अप्रशस्त क्या बात है, हम तो कुछ नहीं समझे, क्योंकि हमने तो प्रशस्त शुभ भावों को प्रशस्त और अशुभ भावों को अप्रशस्त ऐसा सुन रखा है ना। तो ये सम्यक्त्व में या जो कोई उपशम होता है वो उपशम में प्रशस्त अप्रशस्त जो बात आती है तो उसका सही स्वरूप जरा दोबारा समझाइए। तो उपशम क्या होता है उसको पहले देखेंगे, उसके बाद वो प्रशस्त अप्रशस्त के भेदों की चर्चा करेंगे। किसी कर्म का उपशम होना यानी क्या होता है, वो उदय में नहीं आता है, सत्ता में बना रहता है, सत्ता में पड़ा है परंतु उदय में नहीं आ रहा तो उसको कहेंगे वो उपशमित है। ये तो बात समझ में आ रही है। अब ये जो हम मिथ्यात्व की बात अब उठाएंगे, पहले में पहले दर्शन मुनि का जो मिथ्यात्व, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है उसकी सत्ता में दर्शन मुनि का एक मिथ्यात्व प्रकृति है। तो ऐसा जीव जब जिनेन्द्र भगवान की जो उपदेश उसको प्राप्त होता है और वो सही निर्णय करता है तत्व निर्णय, और जब उसको सम्यक्त्व प्राप्त होता है तो ये मिथ्यात्व प्रकृति में क्या होता है उसको यहाँ समझाएंगे। अनादि से उसके सारे निषेक सत्ता में पड़े हैं, क्योंकि उसका बंध तो चलता है ना, जब तक मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्यात्व कर्म का बंध तो हर समय चल रहा है, कभी अधिक बांधेगा कभी कम बांधेगा, परंतु वो तो है ही सत्ता में पड़ा हुआ। नीचे ये जो आड़ी लाइन्स बताई है, नीचे के लाइन वो वर्तमान का निषेक है। निषेक का अर्थ क्या होता है, एक साथ जितने परमाणुओं का पुंज उदय में आता है उसको कहेंगे निषेक। एक निषेक उसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे सागरों के निषेक पड़े होते हैं सत्ता में। औपशमिक समय तो प्राप्त होता है, उस काल में क्या होता है, तो क्या होता है, अभी ये तीन करण परिणाम होते हैं ना, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो जब अनिवृत्तिकरण परिणाम होते हैं तो ये नीचे वो उसके परिणाम दिखा रहे, तो बीच में कितने ही निषेकों का अभाव हो जाता है। अभाव कैसे होता है, निषेकों में तो बहुत सारे परमाणु हैं, तो कुछ परमाणु नीचे अपकर्षित होकर नीचे आते हैं और कुछ परमाणु ऊपर चले जाते हैं और ऊपर के निषेकों में उसके साथ मिल जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, उसमें निमित्त क्यों, क्योंकि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था, अभी क्यों हो रहा है, कि जीव तत्व विचार में लीन हुआ है, उस कारण अपने आप ही कर्मों में ये अवस्थाएं बदलती है। अभी तक तो नहीं हुआ था कभी, अनादि से मिथ्या दृष्टि था, अब तत्व विचार में ऐसा तद्रूप होकर लीन हुआ है और उसका अभी सम्यक्त्व का काल अभी थोड़े ही समयों में सम्यक्त होने वाला है, ऐसी उसकी जो परिणामों की अवस्था है उस विशुद्ध परिणामों के कारण ये ऐसी गैप तैयार होती है, अंतर होता है। अंतर होता है तो नीचे के जो निषेक है उसको कहेंगे प्रथम स्थिति, ऊपर जो पड़े है उसको कहेंगे द्वितीय स्थिति। अंतर तो तैयार हुआ, इसके बाद क्या होता है, तो ये परमाणु अपनी जगह छोड़कर पहले ही उदय में न आवे, इस तरह से इसमें उपशम किया जाता है। किसमें, ये द्वितीय स्थिति वाले जो परमाणु है मिथ्यात्व के है ना, तो उनको उपशमित किया जाता है। पहले समय में कुछ परमाणु दूसरे को समय में कुछ, ऐसे करते करते एक छोटे अंतर्मूर्त में सभी परमाणु उपशमित है, ये अंतर्मूर्त के लिए उपशमित किए जाते हैं द्वितीय स्थिति में। पहले स्थिति वाले तो एक एक समय करके एक एक निषेक गल जाने वाला है, जब अंतिम समय का स्थिति का निषेक गल जाता है तो यहाँ पर मिथ्यात्व के कोई परमाणु नहीं है, कोई निषेक नहीं है, अंतर्मूर्त तक कुछ नहीं है, तो उतने काल में यहाँ औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है और उसी समय से लेकर यहाँ तीन टुकड़े तैयार होते हैं। ये तो औपशमिक सम्यक्त्व के काल में क्या होता है उसको देखा। ये जो यहाँ उपशम किया ना, पहले अंतर किया बाद में उपशम किया,
उस उपशम का नाम है प्रशस्त उपशम। उसको शुभ अशुभ रूप कुछ नहीं मानना है, वो प्रशस्त का यानी अच्छा और प्रशस्त बुरा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये अपूर्व सॉरी अंतरकरण के बाद यानी अंतर के पूर्वक जो उपशम होता है, अंतरकरण पूर्वक जो उपशम होता है उसको कहेंगे प्रशस्त उपशम।
देखो बात ऐसी होती है कि जब वो अंतरकरण मतलब पूरा अंतर नहीं हो रहा है, वहाँ के जो नीचे गए वो पूरे नहीं गए हैं, तब तो ऊपर के यानी अभी जो द्वितीय स्थिति बनने जाने वो द्वितीय स्थिति वाले पहले स्थिति में अपकर्षित होकर उदय में आ सकते हैं,
यानी यहाँ से ऐसे नीचे आ सकते हैं यदि उपशम न करे तो।
तो इसलिए उसका कैसा
या बीच में भी आ जाएंगे, अंतर में भी आ जाएंगे,
बहुत भला किया है।
हाँ।
यानी कैसा, अभी मान लो स्कूल का क्लास चल रहा है और कोई लेट आवे तो उसको टीचर कहे उधर ही रुक जाओ, अंदर नहीं आने का, तू लेट आया है, तो उसने उसको अंदर आने से रोका। वैसे यहाँ जो द्वितीय स्थिति वाले जो कोई निषेक है वो देखो भाई बात ऐसे,
यहाँ मिथ्या तो
की बात चल रही है ना,
यहाँ अकेले मिथ्या तो की बात,
कर्मों की हम यहाँ डिस्कशन,
ज्ञानावरण वगैरह में सबका उदय चल रहा है यथा योग्य सब में,
वहाँ कोई गैप वैप नहीं है।
नहीं नहीं, अभी जब उपशम सम्यक्त्व का पहला समय होगा उसी समय यहाँ तीन टुकड़े हो जाएंगे,
तो
शुरू हो जाएगा टुकड़े होने का कार्य शुरू हो जाएगा।
यानी वो द्वितीय स्थिति वाले जो परमाणु है वो जीवों के परिणामों के निमित्त से ऐसे उपशमित हो जाते हैं कि जब तक वो काल पूरा नहीं होता है वो नीचे नहीं आएंगे, उदय में ही नहीं आएंगे, उसको प्रशस्त उपशम कहा जाता है। अभी आपको कहना तो अच्छा उपशम है नहीं आता है,
हाँ ये उसमें, हाँ उपशमित मिथ्या तो में से उपशमित सम्यक तो हुआ, हाँ मिथ्या तो कोई उपशमित किया था, हाँ तीन चीजें, उपशमित है, उपशमित ही है, मिथ्या तो उपशमित होता था और उस उपशमित अवस्था वाले मिथ्यात्व को ही सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप टर्न किया, उसमें से थोड़े परमाणु सम्यक मिथ्यात्व रूप हुए, थोड़े परमाणु सम्यक प्रकृति रूप हुए, उसकी उपशम अवस्था चल रही थी तभी उसमें से ये तैयार हुए, उसका अनुभव घटकर ये दो प्रकृतियां तैयार हुई, वे भी उपशमित ही है। उपशम सम्यक्त्व के काल में इनमें से किसी का उदय नहीं होने वाला, ऐसा जो उपशम हुआ है उसको क्या कहेंगे, प्रशस्त उपशम। अब उसी समय जब दर्शन मुनि का प्रशस्त उपशम चल रहा है, अनंतानुबंधी में क्या हो रहा है, अनंतानुबंधी में ऐसी कोई गैप भी कुछ नहीं तैयार होते, तो यहां तो जो अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय वहां तक तो अनंतानुबंधी का भी उदय था, अब यहाँ अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय छूट गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो ये भी खिर गया, परंतु अभी जो उदय रूप है ना अनंतानुबंधी, वो अपने रूप उदय में नहीं आएगा, वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन रूप से उदय में आएगा, उसके परमाणु अनंतानुबंधी रूप से एक समय ऊपर पड़े हैं, ये उदय वाला समय है, यहाँ अनंतानुबंधी कुछ है ही नहीं है, कहाँ है, एक समय ऊपर पड़े हैं, ये समय बीत जाएगा तो वो आगे के समय वाले वो अप्रत्याख्यान वर्णादि रूप हो जाएंगे, फिर अनंतानुबंधी कहाँ है, एक समय ऊपर ही है, चढ़ते जाएंगे नहीं, वर्तमान समय में उदय आते आते टर्न होकर उदय में आएगा, अनंतानुबंधी रूप से उसका उदय नहीं चलेगा तो वो उसको क्या कहेंगे, उदय नहीं आ रहा है, अभी पड़े यहां पर उदय में नहीं आ रहा, तो उदय किस रूप से आ रहा है, अन्य रूप से हो रहा है, पर रूप होकर उदय आ रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा था, उस अप्रत्याख्यान रूप से उदय में आता है, परंतु वो है वहां पर पड़ा हुआ है ऊपर ही, एक समय ऊपर ही पड़ा है, उसका उदय नहीं हो रहा है, अपने रूप से स्वरूप से उदय नहीं है, पररूप से उदय हो रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ है, कोई गैप तैयार नहीं हुई है, ऐसा जो उपशम है उसको कहेंगे अप्रशस्त उपशम। उदय में नहीं आना, सत्ता में बना रहना, उसको कहेंगे उपशम। हाँ, उदय में तो आएंगे क्योंकि स्थिति पूरी हो गई है, स्थिति पूरी हुई है तो अभी उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। किस रूप उदय में आ जाएंगे? टर्न होकर उदय में आएंगे। ये तो सारे ऊपर है ना, वो सारे ही अप्रशस्त उपशम है। कोई भी अपनी जगह छोड़कर वर्तमान में अनंतानुबंधी रूप से उदय में नहीं आ सकते, बस इतना ही लेना, वो अप्रशस्त उपशम।
इसका दूसरा नाम क्या?
यहाँ इसी का कहते हैं सदवस्था रूप उपशम। ऐसा ही कहाँ सुना था सदवस्था रूप उपशम? क्षोपशम ज्ञान में भी घटित होगा, ज्ञानावरण में भी यह सदवस्था रूप उपशम कहेंगे, परंतु वहां सर्वघाती के लिए कहा था हमने, सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। सदवस्था रूप कहो या अप्रशस्त कहो, एक ही बात है।
इसको अप्रशस्त कहने का ये भी प्रयोजन हो सकता है ना, उसका भरोसा नहीं, कभी आ जावे तो वह जीव दूसरे गुणस्थान में आएगा। छह अवली या एक समय बाकी है, मैक्सिमम छह अवली, तो यही अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ में से एक कोई उदय में आवे, यानी उसकी गारंटी नहीं है कि नई उदय में आवे। ये सब जीवों के परिणामों के निमित्त से बातें हो रही है। यहाँ एक बात बिल्कुल ध्यान रखना कि यहाँ जीवों के परिणाम जीव के स्वचतुष्टय में हो रहे हैं, और कर्मों की जो उपशम अपकर्षण उत्कर्षण जो कुछ पर्याय हो रही है वह उनके अपने स्वचतुष्टय में। कर्म तो अनंत है, तो अनंत कर्म परमाणु के अपने अपने अवस्था अपने अपने से हो रही है, बाजू वाले कर्म परमाणु से दूसरे बाजू वाले परमाणु के नहीं होने। हाँ आगे
आपका प्रश्न है, ये विसंयोजना कब करता है? विसंयोजना अर्थ क्या देखा था हमने? अभी तो हमने क्या देखा था? उसका अप्रशस्त उपशम, अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम देखा ना अभी। अभी जहाँ जीव की विशुद्धि बहुत बढ़ती है, अभी पहले हम वेदक समय दृष्टि की बात करेंगे। क्षोपशम समय दृष्टि है, उसकी विशुद्धि बहुत बढ़ने के कारण सत्ता में जो अनंतानुबंधी है, उदय तो नहीं चल रहा है परंतु सत्ता में है ना, वो सारे सत्ता के सारे अनंतानुबंधी के परमाणु एक समय में थोड़े दूसरे समय में थोड़े ऐसे करते करते सभी के सभी अन्य तीन कषाय रूप हो जाते हैं। सत्ता में पड़े हुए सभी, जितना अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाणु जितने पड़े हैं अनंतानुबंधी के परमाणु, वो सारे के सारे अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन आदि रूप हो जाते हैं, अनंतानुबंधी की सत्ता नष्ट हो जाती है। ये तो दो मत है, किसी का कहना है मात्र वेदक समय दृष्टि के होते हैं, कोई आचार्य कहते हैं दोनों में होते हैं, औपशमिक सम्यक्त्व के काल में भी ऐसा होता है और वेदक सम्यक्त्व के काल में भी हो सकता है।
आपका क्या कहना है, क्षायिक सम्यक्त्व का क्या होगा? वो कभी करेगा, क्षयोपशम में करे कभी करेगा, क्षायिक सम्यक दृष्टि कब करेगा? अरे उसने तो क्षय कर दिया है,
वही तो बात बता रहे। हाँ ख्याल में आई बात, ये विसंयोजना की, यानी विसंयोजना वाले के सत्ता में अनंतानुबंधी है ही नहीं है। विसंयोजना है वो तो मात्र अनंतानुबंधी में ही होती है, नहीं बाकी कोई कर्म का विसंयोजन नहीं होता। हाँ, चारित्र मोहनी के अनंतानुबंधी में ही विसंयोजना होती है, और वो कैसे रिवर्सिबल है, यानी मिथ्यात्व में वो जीव जाता है तो दोबारा अनंतानुबंधी का बंध भी होता है और उल्टा संक्रमण भी होता है,
संयोजन।
हाँ, विसंयोजना उसका नाम है, ये विसंयोजना में प्रोसेस क्या हुआ तो संक्रमण हुआ। कौन से प्रोसेस से उसकी विसंयोजना हुई? संक्रमित हुए, किस रूप हुए? अन्य तीन कषाय चौकड़ी रूप हो गए। संयोजना होने ने दोबारा उसका बंध के द्वारा और संक्रमण के द्वारा अनंतानुबंधी की सत्ता दोबारा तैयार होती है। यह अनंतानुबंधी में ही ऐसा होता है, अन्य कषायों में नहीं। अन्य कषाय एक बार संक्रमित होकर नष्ट हो जाए तो फिर दोबारा उसकी उत्पत्ति नहीं होती, जो क्षपक श्रेणी में हो सकता है। एक एक समय के लिए आपका प्रश्न ऐसा है, पांचवें गुणस्थान वाले के जैसे चौथे वाले के अप्रत्याख्यान का उदय नहीं है, सॉरी अनंतानुबंधी का उदय नहीं है और उसका अप्रशस्त उपशम है, वैसे पांचवें वाले को क्या है? तो उसके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान दोनों का ही उदय नहीं है, उसका अप्रशस्त उपशम है। बिल्कुल नहीं, उसमें विसंयोजना होती ही नहीं। विसंयोजना एकमात्र अनंतानुबंधी में ही होती है। वही तो एक समय वाला संक्रमण होगा, उसी को अप्रशस्त उपशम कहा ना हमने। नहीं उसका कोई नहीं, नहीं एक गुण संक्रमण यानी गुणित प्रमाण में संक्रमण, इसका नाम ही अप्रशस्त उपशम, बस उसी में वो संक्रमण भी गर्भित है। बाकी अन्य कषाय में अन्य कषाय रूप का संक्रमण होता रहता है, उसकी डिटेल में अभी नहीं क्योंकि अपना वो विषय नहीं है। वो बहुत उसमें सूक्ष्म बातें हैं, अभी जितना यहाँ नेसेसरी उतना ही समझो। हाँ
तो अभी प्रशस्त और अप्रशस्त का बात अपने ख्याल में आ गई
दिव्या बहन, कुछ समझ में आई बात? जहाँ अंतर करता है और बाद में उपशम होता है वहाँ कहेंगे प्रशस्त उपशम। ऐसा प्रशस्त उपशम कौन कौन सी प्रकृतियों में होता है? हाँ यानी ऐसे गैप तैयार होके उपशम कौन कौन सी प्रकृतियों में होता है? हाँ अभी तो हमने देखा वो दर्शन मोनी में और उपशम श्रेणी में चारित्र मोनी में, दो में ही प्रशस्त उपशम होता है। चारित्र मोनी के हाँ द्वितीय उपशम तो दर्शन मोनी में होता है, द्वितीय उपशम सम्यक्त्व का नाम है और वहाँ चारित्र हाँ उस वक्त भी अंतर होता है। तो दर्शन मोनी को हमने देख ही लिया, प्रथम उपशम हो या द्वितीय उपशम हो दर्शन मोहिनी में अंतर होके उपशम होता है, क्योंकि वो सम्यक तो यानी दर्शन मोहिनी का उपशम है।
देखो
उपशम हाँ।
इसका दूसरा ये हम बाजू से देखेंगे तो औपशमिक भाव कितने प्रकार के हैं, कौन से? तो औपशमिक चारित्र यानी वहाँ चारित्र मोहिनी का उपशम हो गया ना। अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कि उपशम कौन से इसमें होता है, तो आपने कहा कि दर्शन मोहिनी में होता है और चारित्र मोहिनी में होता है। जब दर्शन मोहिनी में उपशम होगा तो औपशमिक सम्यक्त्व और आगे औपशमिक चारित्र,
परंतु जिसमें अप्रशस्त उपशम होता है उसको औपशमिक भाव नहीं कहते। समझ में आती है, क्योंकि ज्ञानावरण आदि में भी होता है, मति ज्ञानावरण में भी हमने देखा था, उदय में नहीं आना सत्ता में पड़ा रहना। अभी इतना ही समझो, जहाँ अंतर पड़ के जो प्रशस्त उपशम जहाँ होता है उसी में औपशमिक भाव बताया है, दर्शन मोहिनी में भी और चारित्र मोहिनी में भी एक्सेप्ट अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी में अंतर नहीं पड़ता, उसमें या तो अप्रशस्त उपशम है या विसंयोजना है अनंतानुबंधी। अप्रशस्त उपशम है या विसंयोजना है। अब हम आगे चले गए थे यहाँ पर
29 नंबर
की गाथा आगे असंयत पना और सम्यक दृष्टि पना के सामानाधिकरण्य को दिखाते हैं। ये सामानाधिकरण्य क्या होता है? जिनका अधिकरण यानी आधार समान है उसको सामानाधिकरण्य कहते हैं। जैसे एक ही वस्तु को दो विशेषण से संबोधन करेंगे तो वो विशेषण की आधारभूत वस्तु एक ही है,
यहाँ असंयत सम्यक दृष्टि कहा ना, चौथे गुणस्थान का नाम है असंयत सम्यक दृष्टि। जिसको सम्यक दृष्टि कहा है उसी को असंयत कहा है। तो असंयतपना ये विशेषण हुआ, सम्यक दृष्टिपना ये भी विशेषण हुआ। दोनों के आधारभूत वस्तु यानी जीव एक ही है, तो दोनों को सामानाधिकरण ने कह दिया, बस इतना ही है। ये नाम कुछ अलग अलग आएंगे तो डरना नहीं कभी। और नहीं समझता है ना, 10 बातों में से एक बात भी समझ में आएगी। कहीं कहीं ऐसा भी होगा ये बात तो समझ में नहीं आती, पूछना। और फिर भी कहीं ऐसा भी हो सकता है कि गणित कुछ आया है, कुछ नहीं भी समझा, बिल्कुल अरुचि मत रखना।
यानी आपको ऐसा कहने के मैदान छोड़ के भागना नहीं।
हाँ, मैदान छोड़ के भागना नहीं।
क्योंकि हम भी छोड़ के भागने के ही वाले थे, लेकिन पूछ पकड़ के बिठा लिया।
नहीं भागे तो बहुत सारा लाभ हुआ, ये तो ज्वलंत उदाहरण है आपके सामने। हाँ, इतना लाभ हुआ कि अभी वो कर्णाटक सिखाने भी लगे है ना। हाँ, हम देखेंगे 29 नंबर की गाथा। नो इंदिये सुविरदो नो जीवे थावरे तसेवापी जो सद्दह दिजिनुत्तम सम्मा इट्ठि अविरदोसो। नो इंद्रिये सुविरतो नो जीवे थावरे तसेवापी यः श्रद्धधाति जिनोक्तम् सम्यक् दृष्टिर् अविरतः स। समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। इंद्रियों से जो विरत नहीं है यानी जिसके इंद्रिय संयम नहीं है, और सावर और त्रस जीवों से भी जो विरत नहीं है यानी उसमें प्राणी संयम भी जिसके नहीं है। टीका, जो जीव इंद्रिय विषयों में नो विरत यानी विरति रहित है तथा वैसे ही स्थावर त्रस जीव की हिंसा में भी विरत नहीं है, त्याग रहित है तथा जिनेन्द्र द्वारा उपदेशित प्रवचन का श्रद्धान करता है। प्रवचन में हमने क्या देखा था, आप्त आगम और पदार्थ उनका श्रद्धान करता है, वह जीव अविरत सम्यक दृष्टि है। अविरत क्यों कहा, क्योंकि उसको ना इंद्रिय संयम है ना प्राणी संयम। सम्यक दृष्टि क्यों कहा, उनके तो जिनेन्द्र कथित प्रवचन में श्रद्धान है, आप्त आगम और पदार्थों में श्रद्धान है। जिससे असंयत वही समय दृष्टि, वह असंयत समय दृष्टि है। इस तरह समान अधिकरण पना दृढ़ किया, अनेक विशेषणों का एक वस्तु आधार हो वहां कर्मधारय समास में समानाधिकरण पना जानना। ये तो कर्मधारय वो व्याकरण की विशेष बात है, उसको छोड़ दो। पुनश्च अपि शब्द से जीवे तसे स्थावरे वा अपि है ना, अपि शब्द से उसके संवेदाधिक सम्यक्त्व के गुण भी इसके पाए जाते हैं। अभी अभी हमने कार्तिकेय अनुपरीक्षा में ये सीखे थे। हाँ, प्रश्रम संवेग आस्तिक्य अनुकंपा, ये उसके जो गुण है वो पाए जाते हैं। पुनश्च यहाँ जो अविरत विशेषण है वह अंत्य दीपक समान जानना। अंत्य दीपक का अर्थ क्या है, जो शब्द यहां तक आया है इसके पहले में भी लागू होता है। जैसे अंत की ओर रखा हुआ दीपक पिछले सर्व पदार्थों को प्रकाशित करता है, वैसे यहां अविरत विशेषण मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों में अविरतपना को प्रकाशित करता है। यानी कहां तक के जीव अविरत है, यहां चौथे तक है। चौथे तक यानी क्या है, पहले दूसरे तीसरे और चौथे चारों ही गुणस्थान वाले असंयत है। पुनश्च अपि शब्द से अनुकंपा भी है भावार्थ। कोई समझेगा कि विषयों में अविरति है इसलिए विषयानुरागी बहुत होगा, वैसा नहीं है। मिथ्या दृष्टि भी अविरत है और ये चौथे वाला भी अविरत है, तो दोनों समान विषयाभिलाषी हो गए। तो कहते ऐसा नहीं है, संवेगादि गुण संयुक्त है। यानी अविरत होने पर भी इसके संसार का भय है, धर्म के प्रति रुचि है वगैरह वगैरह।
पुनश्च हिंसादि में अविरति है, इसलिए निर्दय होगा वैसा नहीं है, दया भाव संयुक्त है। अभी उससे हिंसा टलती नहीं है, फिर भी वहां कोई वो मारने का उसका अभिप्राय नहीं है, ऐसा अविरत सम्य दृष्टि है। यहीं रुकते अभी हम। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। अरविंद भाई।